ओम शांति। हम सबके बीच उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता राजू भाई, हम सभी एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं। आप 1960 में उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे से गांव में, जहां से आपको बाबा ने चुना और 1960 से बाबा के बने और आपके घर में ही गीता पाठशाला की शुरुआत हुई। 1972 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और 76 से जो मुरलिया सिंधी में पहले होती थी, क्योंकि बाबा जब सुनाते थे तो हमारी दादियां लिखती थी तो वो सिंधी भाषा में होती, और सिंधी को हिंदी में ट्रांसलेशन करने की जिम्मेवारी बाबा ने और दादियों ने आपके सिर पर रखी और आप अनुवाद करते थे। और तब से लेकर के मुरली के अंदर जो भी प्रश्न उत्तर वरदान स्लोगन जो भी कुछ आता है वह आप मुरली से ही निकालते हैं, और स्व उन्नति के हेतु पत्र पुष्प में जो भी कुछ आता है, जो भी कुछ पुरुषार्थ की बातें आती हैं, वह भी आप ही निकालते हैं। और अव्यक्त बाप दादा के इशारे, दादी जी की प्रेरणाएं, जो भी सेवा समाचार हैं देश विदेश तक पहुंचाने की जिम्मेवारी बाबा ने आपके सिर पर रखी है। अव्यक्त बाप दादा से आपको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, और आप दादी जी के अंग संग रहते जो भी कुछ यज्ञ के कारोबार के प्रश्न उत्तर होते हैं वो सारी जिम्मेवारी, उन प्रश्नों का उत्तर आपके द्वारा ही दादी जी सारे देश विदेश में भेजते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा विशेष गुण रहा, वह है सच्चाई और दूसरा गुण समाने की शक्ति। इन दो गुणों के आधार से बाबा ने इतने ऊंचे स्थान पर आपको बिठा दिया। आप ग्राम विकास प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आज का हमारा विषय है प्रवृत्ति में रहते ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति। हम सुनेंगे आदरणीय राजू भाई को।
ओम शांति। सभी बाबा के इस तपस्या भूमि में बहुत अच्छे अच्छे योग के अनुभव कर रहे हैं। सभी फरिश्ते स्थिति में अव्यक्त वतन की सैर कर रहे हैं। कितने अच्छा वायुमंडल था, जब हाल में प्रवेश हुए तो ऐसे लगता था जैसे सितारों की महफिल बाबा के सामने खड़ी है। तो आप सभी मधुबन की इस तपस्या भूमि का बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। बाबा ने जिस भूमि पर रहकर साकार में तपस्या की और जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त किया, उसी धरनी पर आप सब बाबा के हम जिन्स अधिकतर प्रवृत्ति के युगल इस भट्टी के अंदर आए हैं। तो युगल मूरत साथ में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति में रहें, क्या ब्रह्मा बाबा ने किया जो संसारिक जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त किया। वैसे तो जीवन मुक्ति सतयुग के लिए गाई हुई है, क्योंकि हम सब कहते हैं लक्ष्य हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, तो हम सब उस लक्ष्य की ओर, मार्ग हमारा जीवन मुक्ति है। तो हम जब जीवन मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लक्ष्य को सामने रखते हुए, तो ब्रह्मा बाबा हम सबके आगे सबसे पहले एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़ा परिवार भी, लौकिक परिवार भी बड़ा था, व्यापार भी बहुत बड़ा था, और फिर जब अलौकिक बाबा ने, शिव बाबा ने जब उनको अलौकिक पिता बनाया, तो तो भी एक बहुत बड़ा परिवार उनको संभालने के लिए दिया। बाबा कई बार कहते हैं कि मैं बहुत बछड़े वाल हूँ, मेरे बहुत बच्चे हैं, तो इतने सब बच्चों को संभालते हुए, पालना देते, प्यार करते, सबके साथ रहते और मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लिया। कलयुग के अंदर जीवन मुक्त स्थिति बन जाए असंभव बात समझते हैं सभी, इसलिए जब कोई भी दुख आता है, बंधन आता है, तो कहते मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, मुक्त हो जाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएं। और बाबा कहता है कि नाटक में कोई भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, जीवन में रहते हुए मुक्ति की स्टेज का अनुभव कर सकते हैं। तो सतयुग और त्रेता के अंदर हम सब ने जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव किया, लेकिन उसके भेंट में बंधन थे नहीं, खुशी का अनुभव कैसे होगा? जब सभी जीवन मुक्त हैं, तो बंधन है ही नहीं, इसलिए उनके पास सामने कोई कंट्रास्ट नहीं था। हम सब संगम युग पर बंधन को भी जानते हैं, मुक्त स्टेज को भी जानते हैं। किस ब्राह्मण आत्मा ने कितने बंधनों को काटा है वो खुद समझ सकती है, क्योंकि गृहस्थी जीवन में अनेक प्रकार के बंधन हैं। और जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा एक शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं, बच्चे बन जाओ तो बच जाओगे। आप बच्चे हो या दादा दादी नाना नानी, कौन हो, बच्चे है ना सब। बच्चे बन जाएंगे तो अनेक समस्याओं से बच जाएंगे, अनेक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन कर्म का ही बंधन है। आत्मा जब इस शरीर में आई तो बिना कर्म के कर्म क्षेत्र पर नहीं रहती, और कर्म करते करते इस देह के बंधन में आते आते वो अनेक संबंधों के बंधन में बंध गई। संबंध भी बंधन बन गए, थे संबंध सुख देने के लिए, क्योंकि आत्मा कोई भी पार्ट संबंध के बिना बजा ही नहीं सकती, संबंध आवश्यक है। सतयुग में भी जब जन्म हुआ तो माँ के साथ पहला संबंध हो गया, फिर भाई बहन मिले, कलयुग में तो अनेक संबंधों का विस्तार हो गया, लेकिन संबंध तो पूरे कल्प में ही रहे हैं, क्योंकि आत्मा जब शरीर लेगी तो बिना संबंध के वो नहीं रह सकती। लेकिन संबंध बंधन का रूप बन गए कलयुग में, और बंधन माना दुख अशांति। ब्राह्मण जीवन में हम सब बंधन मुक्त स्टेज का अनुभव करें, जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें, उसके लिए किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कौन से बंधन हैं जिनको मुझे काटना है? पहले पता तो है ना हर एक को किन बंधनों में हम अभी तक बंधे हुए हैं, क्योंकि जब बंधन होते हैं तो उसकी निशानी दिखाई देती है कि वो फास्ट गति से चल नहीं सकता है, बंधा हुआ है। पहले जमाने में शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैं एक बार अंडमान गया, अंडमान में बंधक बना करके हमारे भारतवासियों को काला पानी की सजा देते थे, जब अंग्रेजों का राज्य था, बहुत सितम हुए थे। जिन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कोई कार्य किए तो उनको पकड़ पकड़ करके काला पानी की सजा दे देते थे, वहां छोड़ के आ जाते थे, और सिर्फ छोड़ते ही नहीं थे लेकिन उसके बाद वहां के जो ब्रिटिश लोग थे, वहां के जो अधिकारी लोग थे, बहुत कड़ी सजा देते थे, और उस कड़ी सजा में दोनों पैर दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए और चला रहे हैं, उनको दौड़ाते हैं, तो दृश्य बड़े दर्दनाक दिखाई दे रहे थे, बंधन दिखाई दे रहा था, क्या बंधन है। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत, उनका बलिदान, उनका उमंग ऐसा था जो कभी भी उनके आगे वो झुके नहीं, कितना भी बंधन उनको डाला गया। वर्तमान समय हर एक मनुष्य आत्मा किसी न किसी बंधन में जकड़ी हुई है, और सबसे बड़ा बंधन है हमारे मन का संकल्पों का बंधन, विचारों का बंधन, देह का बंधन तो आत्मा को है ही, इसके बिना तो रह ही नहीं सकती। देह में आई है लेकिन ये देह बंधन बन गई क्योंकि धीरे धीरे इसके साथ अटैचमेंट हो गई। सतयुग और त्रेता में कोई बंधन इस देह ने नहीं डाला क्योंकि वो आत्मिक स्टेज थी, आत्म अभिमानी स्थिति थी। आत्मा शरीर रूपी चोले को ऐसे उतारती थी जैसे कपड़े को उतार दिया, नया चोला धारण कर लिया। अभी इस चोले को उतारने और लेने में कितनी मेहनत है, कितना दुख है, कितनी फीलिंग्स होती हैं, कितना भय लगता है क्योंकि ये बंधन खींचता है आत्मा को। बाबा हम सबको ये जो अभ्यास करा रहे हैं कि बच्चे इस देह से डिटैच होने का अभ्यास करो, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। हम सब इतनी जो भट्टियां करते हैं उसके पीछे मूल उद्देश्य यही है कि आत्मा इस पिंजड़े को छोड़कर डिटैच होने का अभ्यास करे। बहुत बंधन में बंध गई है इसके, इसलिए जब समय मिले बाबा ये अभ्यास हम सबको सिखाते हैं, कुछ सेकंड के लिए ऐसे लगे ये अलग है, मैं अलग हूं, मुक्त स्टेज का अनुभव हो कि आत्मा जैसे उड़ता पंछी है। पंछी कोई पिंजरे के अंदर हो सदा दुखी रहेगा, अगर उड़ने लगे तो अपने आप इधर से उधर पहुंच जाता है। तो बाबा हम सबको उड़ता पंछी बनाना चाहते हैं, इसलिए मन और देह इन दो बंधनों से पहले मुक्त होना है और इसके लिए शरीरी स्टेज का बहुत अच्छा अभ्यास, बार बार अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाएं और इस देह से डिटैच होने का अभ्यास करें। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के अंदर जब शिव बाबा ने प्रवेश किया उसके 5-6 साल पहले से, 1932 की डायरी जो हमें मिली थी, उस डायरी में बाबा ने अपना ये पुरुषार्थ बड़े अच्छे ढंग से बताया है, लिखा है डायरी में। जैसे आत्मा मालिक है, राजा है और वो कर्म इंद्रियों की को अपने अधीन रखकर उनसे बात करती है, उनको आर्डर करती है, और सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि पर भी अपना शासन हो, इसलिए मन वजीर बुद्धि वजीर ऐसे उसके शब्द उच्चारण करके तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते, तुम मेरी हो फिर भी मेरा कहना नहीं मानती, तुम मुझे गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देते, क्यों नहीं एकाग्र होने देते, ऐसे ऐसे एक एक कर्म इंद्रिय से बात करके बाबा ने अपने आप को उसी समय कर्म इंद्रिय जीत बना लिया था, तब से बाबा उनमें प्रवेश हुए। बिल्कुल प्योर आत्मा, जैसे भले कहता है मैं पतित तन में आता हूं, पहला तो तन पतित ही था, लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब तक बाबा ने अपने आप को कर्म इंद्रिय जीत बना लिया था। इसलिए आपने अनुभव सुने होंगे जब शुरू शुरू के साक्षात्कार हुए, दादियां ट्रांस में जाती थी तो ब्रह्मा बाबा को इतने बड़े शरीर को देखते हुए भी भूल जाती थी कि ये कोई मेल का शरीर है, और इतना हल्का अनुभव करती थी जैसे बाबा को ऐसे हाथों में उठा लेते थे। एक एक दादी का यह अनुभव था क्योंकि बाबा ने इतनी तपस्या की थी, इतनी कर्म इंद्रियों को शीतल योगी पवित्र बनाया था और उसका अभ्यास यही किया था कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा है। उनकी डायरी में लिखा हुआ था, उनके बेटे का नाम नारायण था, बेटी का नाम पालू था, निर्मल शांता दादी को, युगल का नाम जसोदा था, तीन तो बहुत समीप थे पहले, बाकी और 3-4 बच्चे थे जो बाहर दुनिया में चले गए, लेकिन ये साथ में रहते थे। तो बाबा ने बहुत पक्का किया हुआ था जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये पालू आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ऐसे बाबा ने एकदम पक्का करके अपने आप को स्व स्थिति में स्थित कर लिया, आत्म अभिमानी स्टेज बना ली, और उस आत्म अभिमानी स्टेज के कारण ये देह उनके लिए बंधन नहीं थी। अपने आप उस बंधन से डिटैच हो गए। पैसे के विषय में आप सबने सुना है, जिस दिन बाबा की प्रवेशता हुई, निश्चय हुआ कि परमात्मा का ये कार्य माताओं बहनों के द्वारा होना है। बाबा ने वही समय था, वही निश्चय था, जो अपनी सारी संपत्ति माताओं बहनों के हवाले करके अपने आप को उस धन से डिटैच कर लिया। धन के पीछे कभी बाबा की बुद्धि नहीं गई, उससे बंधन से मुक्त कर लिया अपने आप को। इतना कमाया था, इतनी मेहनत से कमाया था, लेकिन उसके बाद बाबा के हवाले करके, दादियों के हवाले करके अपने आप को हल्का कर लिया, मुक्त हो गए। इतनी सब जवाबदारियां, इतने सब बच्चे, 14 साल तक तो बड़े आराम से खिलाया पिलाया। कहते थे ब्रह्मा कुमारियों में, ओम मंडली में पिस्ते और बादाम मिलते हैं। पिस्ते बादाम खिला खिला करके बाबा ने पालना दी, और वहां से जब यहां भारत में आए, आबू में आते ही ऐसा बाबा ने पेपर लिया जो कच्चे पक्के छट गए। वो पेपर खाने तक का आ गया, भोजन का आ गया, बीमारी के रूप में आ गया, और 1-2 साल के पेपर के अंदर सारा झाड़ हिलने लगा। जो पक्के थे बच्चे बाबा के, वो तो अचल थे, अडोल थे। बाबा चाहे खिलाए चाहे भूखा रखे, बाबा के हैं, बाबा जैसे रखे। और थोड़ा तो जिनको उमंग आता था, जोश आता था, मैं जाके कमा के आऊं, मैं कुछ करके आऊं, बाबा कहता था बच्चे बाहर जाओगे तो मगरमच्छ मुंह खोल करके बैठा है, खा लेगा, माया मगरमच्छ के रूप में खा लेगी, इसलिए बच्चे संकल्प नहीं करो। तुमको जो बाबा ने इतना धन दिया है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, इसका दान करो। और इतनी सब जवाबदारियां होते हुए भी बाबा ने एक दिन भी किसी बच्चे को भूखा नहीं रखा, सबको भोजन मिला। लेकिन 2 घंटे पहले डिक्लियर नहीं है कि भोजन क्या बनेगा, क्यों भाई नहीं कुछ। ऐसी सब परिस्थितियों के बीच में बाबा, इतनी सब जवाबदारियां होते हुए भी बिल्कुल बेगमपुर का बादशाह होकर के रहा, कोई प्रकार की चिंता नहीं। आज प्रवृत्ति के अंदर 5-6-7 सदस्य होते हैं तो आप लोगों को पता होगा क्या चिंता होती है, होता है कि नहीं होता चिंता, कि बाबा के बच्चे बन गए तो सब बेगमपुर के बादशाह हो गए, बेटी बड़ी हो गई है, शादी करनी है, बच्चे हो गए बड़े, इनको अपनी नौकरी दिलानी है, बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, बहुत सारी जवाबदारियां लेकर के कई लोग तो ऐसे बंधन में बंधे रहते हैं। अगर बच्चे नहीं होते तो बंधन सुनाओ क्या होते हैं। हमारे पास एक युगल आते हैं बॉम्बे से, यहाँ घर बनाया है, बच्चे नहीं है कोई भी, बिजनेस भी हम लोगों के कहने से समेट लिया, बिजनेस भी बहुत बड़ा था पहले। हमने कहा अभी तो तुम निर्बंधन हो गए हो, माता जी को सेवा पर भेज दिया करो, क्या करती घर में सारा दिन बैठ करके। तो माता जी क्या कहती है, माता जी माना बच्चे नहीं है लेकिन शादीशुदा तो है, तो हमने कहा कि आप बाबा की सेवा में यहाँ आ जाया करो, घर में क्या एक आदमी को खाना बना के खिलाना पिलाना। तो कहती है इनको कौन खिलाएगा, इतने दिन से तो इन कभी कभी इन्होंने तो भोजन बनाया नहीं है, इन्होंने तो कभी खिचड़ी भी अपने हाथ से नहीं बनाई, तो हमको तो इनके कारण बंधना पड़ता है। हमने कहा ये अच्छा नया बंधन तुमने क्रिएट किया। तो मैं भाई से पूछा, भाई आप अपना भोजन भी नहीं बना सकते हो क्या। कहता क्यों नहीं बना सकता हूँ, इसको चाहिए तो निकल के जाए ना, निकलती नहीं है मोह के कारण। बंधन अपना मन का है लेकिन बहाना है, क्या करूं, उसको कौन खिलाएगा, क्या होगा, फिर बीमार पड़ जाएगा, फिर उसको कौन पूछेगा, लेकिन है तो मन का बंधन ना। तो ऐसे कई प्रकार के मन के बंधन हम बना करके एक दूसरे के साथ इतना अटैच हो गए हैं, जो समझते हैं इसके बिना हम नहीं चल सकते, इसके बिना हम नहीं चल सकते। लेकिन बाबा इतना निराधार रहा, ब्रह्मा बाबा कभी किसी भी बंधन में अंत तक नहीं बंधा। आप सबको मालूम होगा अंत की कहानी, बाबा का दीदी से बहुत स्नेह था, दीदी मनमोहिनी, और दीदी का बाबा के साथ इतना प्यार था जो अटैचमेंट के रूप में था, बाबा के सिवाय और कुछ नहीं, साकार ब्रह्मा बाबा के सिवाय, हमेशा कहती थी यही भगवान है, वो भगवान शिव बाबा को ठीक है वो निराकार है, लेकिन यही सब कुछ है। और बाबा इतना डिटैच, जब शरीर छोड़ने का समय था, बाबा को पता था मैं अव्यक्त हो गया हूँ, मैं संपूर्ण बन चुका हूँ और किसी समय चोले को छोड़ूंगा, नहीं पता था, ऐसा नहीं था। बाबा की मुरलियां एक साल पहले से चल रही थी कि बाबा भी उस पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हैं। अव्यक्त होने का समय जब समीप आया तो दादी जो बहुत पक्की थी, नष्टोमोहा थी, शेरणी थी, दादी प्रकाशमणि, वो जा रही थी, पार्टी लेके आई थी, दो दिन पहले जा रही थी, उसको रोक लिया और दीदी को सेवा पर भेज दिया, उसको अपने साथ नहीं रखा। क्योंकि हो सकता है कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए और दीदी होती तो अपने आप को संभाल नहीं पाती। दादी इतनी शेरणी शक्ति रूप में, बाबा ने और बल भर दिया, हाथ में हाथ दे करके पूरी रात सबको फोन किए, एक आंसू नहीं बहाया। और दीदी को जब पता चला ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबा कैसे जा सकता है, ये झूठ बोल रहे हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी बाबा ने युक्ति रची, नष्टोमोहा स्मृति लब्धा का पाठ पढ़ाते हुए इन सब को ऐसा बनाया। तो बाबा शरीर में थे, जीवन में थे, इतने संबंधियों के संबंधों के बीच में थे, इतनी सब जवाबदारियां थी, लेकिन मुक्त थे, कोई भी बंधन उनको अंत तक भी अपने बंधन में बांध नहीं सका। संबंध सबके साथ निभाया, पिता पुत्र का संबंध निभाया, सबकी प्यार से पालना की, सबके दिलों का हाल सुना, इतनी सारी कारोबार संभाली, कुछ त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। लास्ट दिन भी बाबा ने सभी पत्रों का उत्तर अपने हाथ से दिया। जितने मकान बन रहे थे, जो कारोबार यहाँ चल रही थी, दादी जी का हाथ पकड़ करके पूरा पांडव भवन घुमाया, दिखाया कि यहाँ पर ये काम चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ भंडारा है, यहाँ ये संभालता है। दादी सोच नहीं पा रही थी क्यों बाबा मुझे यह सब बता रहा है। दादी को पता नहीं था कि बाबा हमको बता के छुट्टी लेने वाला है, लेकिन दादी को सब एक एक चीज दिखा करके, बता करके, समझा के और रात को छुट्टी ले ली। मतलब इतना डिटैच था कि सब कुछ पता होते हुए भी किसी को मालूम पड़ने नहीं दिया कि मैं अव्यक्त होने वाला हूं। यह है जीवन मुक्त स्टेज। संबंध निभाए, पालना दी, जिम्मेवारियां संभाली। कभी कभी साकार मुरली में आपने सुना होगा कि बच्चे तुम्हारे लिए योग करना बड़ा सहज है, बाबा के ऊपर तो बहुत मामले हैं। कई बार कहते ना, जिसके मत्थे मामला उसको नींद कैसे आएगी। ब्रह्मा बाबा कई बार कहते थे, इतने मैं बछड़े वाल हूँ, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कभी किसी सेंटर पर कोई बात हो गई, फिर भी बाबा कहते हुए भी, सब बातें सिखाते हुए भी अपने आप को इतना डिटैच किया, इतना उपराम कर लिया, इतना साक्षी हो गया जो मुक्त हो गया। जीवन मुक्त स्टेज। राजा जनक की गाई हुई है, वो जीवन मुक्त थे, विदेही थे, ट्रस्टी थे। लेकिन आप सब अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए क्या ये स्टेज बना सकते हैं? मुश्किल है। बना सकते हैं? जो समझते हैं ये स्टेज बन सकते हैं, हाथ उठाओ। बहुत कम उठा रहे हैं, माताएं तो उठाती नहीं है, नहीं उठाती है ना? क्यों नहीं बन सकती है? जब एक ने बन के दिखाया, एग्जाम्पल हमारे आगे है, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ संन्यास नहीं किया, कोई ऐसा वैराग्य ऊपर का नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से तो वैराग्य था, सब कुछ निभाते हुए, सब फर्ज अदाई पालन करते हुए, बहुत बैलेंस में जीवन बन गई। इसलिए जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव करने के लिए पहले हम संबंधों का मनोविज्ञान समझ लें। संबंध जो है बंधन बने हैं, आज के संबंधों का बहुत गहरा प्रभाव बंधन के रूप में आत्मा पर पड़ता है। पदार्थ अपनी तरफ खींच रहे हैं, विज्ञान के साधन अपनी तरफ आत्मा को खींच रहे हैं, संबंध अपनी तरफ खींच रहे हैं, संस्कार अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये सब बंधन है। कोई ना कोई संस्कार है, छिपा हुआ है, भले हम 10 साल, 15 साल, 20 साल से योग कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन वो छपा हुआ जो संस्कार है, जिसको हमने भस्म नहीं किया, जलाया नहीं, वो कभी न कभी बाहर आ जाता है। लगता है ये शूद्रपन का है, ये ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है, और न चाहते भी जब वो प्रबल रूप लेता है तो सामने आ जाता है, चाहे वो वासनाओं के रूप में है, काम विकार का छिपा हुआ अंश है, जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, ऐसी घटना आती है, तब वो रूप ले लेता है, चाहे वो क्रोध के बहुत सूक्ष्म बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या के रूप में, जेलसी के रूप में, मनमुटाव के रूप में, घृणा के रूप में, नफरत के रूप में, बहुत बच्चे हैं उसके क्रोध के, ऊपर से कहेंगे मैं तो बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा गुस्सा शांत हो गया, लेकिन अंदर से चिड़चिड़ापन, एक दूसरे के प्रति आवेश, आवेग, परचिंतन, परदर्शन, ईर्ष्या, नफरत, ये सब क्या है, उसी के बच्चे हैं ना सब। सूक्ष्म संस्कार कोई न कोई रूप में आत्मा को परेशान कर देते, ये बहुत बड़ा बंधन है। जब तक हमने इन संस्कारों का संस्कार नहीं किया, आप सबको ये गोल्डन चांस इसीलिए मिला है कि ऐसी गहरी तपस्या करो जिस तपस्या से ये संस्कार पहले रियलाइज हो, महसूस तो हो कि मेरे गलत है। कई बार आप देखेंगे कि पता ही नहीं चलता है मेरा गलत संस्कार है, चल रहा है, चाहे हंसने का संस्कार, चाहे किसी पर कमेंट्स करने का संस्कार, पर चिंतन करने का संस्कार, ईर्ष्या द्वेष का संस्कार, निंदा का संस्कार, स्तुति हो गई, महिमा हो गई तो बहुत प्रफुल्लित हो गए, ग्लानि कर दी तो उससे घृणा कर ली, तो ये सब संस्कार जो बहुत सूक्ष्म रूप में हैं, ये आत्मा को अपनी ओर बांधे हुए हैं, बंधन में वो बंधी हुई है। जीवन मुक्त स्टेज में ये सब संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ऐसी मुक्त स्टेज का अनुभव योगी आत्मा कर सकती है। योग के प्रयोग कीजिए, जो ऐसे संस्कार दिखाई दे ना, जो आपको कभी रियलाइज हो कि ये संस्कार मेरा गलत है, ये मुझे नहीं होना चाहिए, उस संस्कार के लिए स्पेशल योग करने की जरूरत है। उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, कुछ सहन भी करना पड़ेगा। तपस्वी मूरत होकर के भले नाश्ता बंद कर दो, नींद छोड़ दो, बात करना बंद कर दो कुछ समय के लिए, बस मुझे ये तपस्या करके इस संस्कार को कट करना है, इस बंधन से मुक्त हो जाना है। संबंधों का हिसाब किताब कैसे कड़े हैं पता ही नहीं चलता है, चलते चलते कई नई हिसाब किताब निकल आते हैं, किससे कब कोई लेन देन हुई थी, कब किसी के साथ कोई व्यवहार हुआ था, चलते चलते वो सामने आ जाता है, कर्ज के रूप में, मर्ज के रूप में, या शरीर की बीमारी के रूप में, पता नहीं चलता है। इतने साल तक हम तो कुछ काम नहीं किया, ऐसे हम तो बहुत पवित्र जीवन में रहे हैं, हमने जीवन भर सबको सुख दिया है, सबको प्यार दिया है, कोई हमारा किसी से लेना देना नहीं रहा, लेकिन जब कोई ऐसी पीड़ा, ऐसी भोगना, ऐसा शरीर का कर्म बंधन हिसाब किताब आता है तो लगता है कोई तो छिपा हुआ था, इस जन्म का नहीं था तो पिछले जन्म का था, तब तो बाहर आया, नहीं तो कहां से आता, वो कर्ज था वो पूरा हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन अगर उस समय आत्मा हिलचल में आ गई तो ज्ञान योग से पूरा हो जाता है कि बाबा की सेवा इतनी की, इतना हमने तपस्या की, इतना समय योग किया, इतना लोगों को संदेश दिया, इतना सुख दिया, फिर भी मेरे आगे ये पेपर आ गया, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, बाबा तो कोई मदद ही नहीं करता, बाबा तो कोई रक्षा ही नहीं करता, बाबा कहता तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन हो जाता ना फिर ऐसे। तो ध्यान देना कि कोई भी बातें आए, कोई भी हिसाब किताब शरीर का आ जाए, संबंधों का आ जाए, समाज के द्वारा आ जाए, सरकार के द्वारा आ जाए, पेपर तो किसी समय कलयुग में किसी सामने आ सकते हैं, लेकिन वो हिसाब किताब आते हुए भी आत्मा उस बंधन में बंध न जाए। बंधन माना खींच, खिंचाव, बार बार उसका चिंतन, वो बंधन है। जिस चीज का बार बार चिंतन चलता, कई बार चिंतन चलता है, माना जैसे एक नाव को आप चलाना चाहें, चप्पू चला कर रहे हैं, लेकिन उसका लंगर बंधा हुआ है, आप रात भर उसको चलाते रहें, सोच रहे हैं वो नाव चल रही है, हम किनारे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो जहां की तहां ही खड़ी रहती है, हिलती डुलती है, समझ में आता है वो चल रही है, बैठने वाला समझ रहा नाव चल रही है, लेकिन वो नाव वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि बंधन को खोला नहीं है, ऐसे ही ज्ञान योग कर रहे हैं। अगर ज्ञान और योग हम कर रहे हैं, अगर हम रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज बाबा की मुरली अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, हर प्रकार का मर्यादा पर भी ध्यान है, फिर भी मुझे चढ़ती कला का, उड़ती कला का, उमंग उत्साह का, अपनी ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं हो रहा है, माना क्या? जरूर कोई बंधन है। सूक्ष्म बंधनों की रस्सियां इतनी कड़ी हैं, जिनको चेक करना बहुत एकांत की जरूरत है। एकांतवासी बन करके चेक करो, कौन सा ऐसा बंधन है जो मुझे बार बार अपनी ओर खींचता है, क्यों खींचता है, किस लिए खींचता है। अगर कोई बहुत अच्छी, बाबा ने परसों मुरली चलाई थी, बच्चे चेक तो कर लेते हैं लेकिन चेंज नहीं कर पाते, और चेक करने के कारण जब सोचने लगते हैं मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये बंधन है, ये संस्कार है, तो क्या होता है, दिल से कष्ट हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है, बाबा क्या करूं, नहीं हो सकता। जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वो बच्चा जब दिल से कष्ट होता है तो बाबा को बड़ा प्यार आता है, बड़ा रहम आता है, क्यों बच्चा छोटी दिल कर रहा है, मैं हूं ना साथ। चेक करो और चेंज करने के लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि मुझे चेक करके चेंज करना है। लेकिन अब कोई संबंध किसी से जुड़े नहीं, उसके लिए संबंधों के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। पांच छह बातें मैं इसमें सुनाता हूं आपको, किस प्रकार के संबंध हमारे आपस के बन रहे हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। सबसे पहले एक व्यवहारिक संबंध है, जैसे कोई दुकानदार के पास कोई ग्राहक आता है, वो ऐसा संबंध जोड़ता है, अच्छा दुकानदार होता है, बिजनेसमैन अच्छा है, तो अपने ग्राहक को इतनी पालना देता है, पहले उसको खिलाएगा, कुछ चाय पूछेगा, बिठाएगा, प्यार से बात करेगा, ऐसा जैसे कोई बहुत पुराना पहचान हो मेरी, क्योंकि उसको अपना सेल करना है, उसको देना ही है, चाहे वो साहब को दुकान पूरी सामने ला करके रखे, बहुत प्यार से बात करेगा, और ऐसे लगता है एक ग्राहक और बिजनेसमैन का कोई संबंध है। लेकिन वो व्यवहारिक संबंध है, व्यवहार के लिए है, व्यवसाय का भी संबंध है, वो रियल नहीं है, वो थोड़े समय का है। आजकल के संबंध भी इसी प्रकार के, कई प्रकार के, माँ बाप बेटे हैं, माँ बेटे हैं, बाप बेटे हैं, लेकिन कई बार वो व्यवहारिकता के रूप में चल रहे हैं। जैसे विदेश के अंदर कहेंगे ये माँ की प्रॉपर्टी है, ये बेटे की प्रॉपर्टी है, इसको इतना मैंने उधार दिया है। भारत की संस्कृति में ये सिस्टम नहीं है कि बेटे को कोई बाप उधार देता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के अलावा संस्कृति कई है जिसमें बच्चे को भी, बहन को भी, भाई को भी कर्ज दे देते हैं, उसे फिर लेते हैं, रिटर्न करते हैं। ये व्यवसाय जैसे हो गया, ये व्यवहारिकता हो गई, लेकिन ये रियलिटी नहीं है संबंधों की। दूसरा एक वैचारिक संबंध है, और उस वैचारिक संबंध के अंदर आप देखेंगे जैसे लेखक और पाठक, माना लिखने वाले का और पढ़ने वाले का संबंध हो जाता है। लेख किसी ने अच्छे अच्छे लिखे, विचार किसी के हैं, लेकिन जो स्टडी कर रहे हैं उनका उनके साथ जैसे बहुत संबंध हो जाता है, उनकी स्टडी के आधार से उनकी जीवन बनने लगती है। महात्मा गांधी जी के, टैगोर जी के, विवेकानंद जी के जो साहित्य हैं, अगर उन साहित्य से किसी का प्यार है, तो जैसे वो उस लेखक के साथ पाठक का एक संबंध जुड़ता जाता है, उसको याद करता है वो संबंध के आधार से। तीसरे संबंध भावनात्मक हैं, जहां पर भावना हुई, स्नेह हुआ, उसके साथ संबंध जुड़ गए। लौकिक संबंध अधिकतर भावना के आधार से जुड़ते हैं, जहां भावनाएं टूटती हैं वहां वो संबंध बिखरने लगते हैं। अगर पति पत्नी में भावनाएं न रहें, बाप बेटे में भावनाएं न रहें, तो संबंध अधिक दिन कायम नहीं रहते, टूट जाते हैं। लेकिन चौथे संबंध, जिस संबंध में हम सब बंधे हैं, वो है आत्मीय संबंध, आत्मा का आत्मा के साथ संबंध। बाबा ने हम सब के उन संबंधों को कट किया है, न हमारा अभी व्यवहारिक संबंध है किसी से, स्थूल में कोई भी प्रकार की लेन देन करके अपना संबंध नहीं बनाना है। कई बार ये कंप्लेन हमारे सेंटर्स पर मिल जाती है, हम परिवार के हैं और एक परिवार के होने के कारण अगर इसको पैसे की जरूरत है तो हम उसको उधार दे देते हैं, और उधार दिया, उसको मदद की उसको जरूरत है, हम समझते परिवार का सदस्य बेचारे को मदद की जरूरत, हमने दे दिया। लेकिन जब थोड़ा समय उसके द्वारा उसका रिटर्न नहीं मिलता है तो संबंध कैसे हो जाते हैं, दुश्मनी के रूप में हो जाते हैं। और रिटर्न न मिलने के बावजूद बाद बहनों के पास शिकायत आती है, बड़ों के पास शिकायत आती है, दादी जी को पत्र आते हैं, क्या पत्र आते होंगे कि देखो इसको मैंने इतना मदद की, समय पर साथ दिया, ये किया ये किया ये किया, वर्णन करना शुरू कर देता है और इसने मुझे धोखा दिया। फिर धीरे धीरे ज्ञान और योग दूर हो जाता, परिवार टूटने लगता है, संबंध बिगड़ने लगते हैं। क्यों ऐसा हम लेन देन करें व्यवहारिक? हमारा एक आत्मीय प्यार है, आत्मा की उन्नति के लिए एक दूसरे के हम सब मददगार हैं। आत्मिक ज्ञान दे करके, समझ दे करके उसकी प्रगति में मदद करें, और अगर कोई स्थूल रूप में भी मदद की जरूरत है और हमारे पास है तो बाबा कहता तुम निस्वार्थ भाव से उसको मदद कर दो, साथ दे दो, रिटर्न लेने की इच्छा कर्ज दे करके क्यों उसको फांस रहे हो, बंधन में बांध रहे हो। आत्मीय संबंध जो है वो बहुत सुख देने वाला संबंध है, बाकी सब संबंध दुख देने वाले हैं। हम सबका जो बाबा के साथ संबंध है, हम सबका जो आपसी संबंध है वो स्नेह का संबंध है, रूहानियत का संबंध है। कोई भी इसके अंदर अगर जिस्मानियत आ गई तो आत्मीय संबंध नहीं कहलाएगा, वो बंधन बन जाएगा। आप सब लौकिक परिवार में भी रहते हुए अभी इस भान को पक्का करो कि ये संबंध सेवा के लिए है। जो भी संबंध हमारे आपस में बने हैं ये संबंध सेवा के लिए हैं, ये रूहानियत से संपन्न है। अगर संबंध के अंदर रूहानियत है, स्नेह सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ प्यार है तो संबंध स्थायी रूप में कायम रह सकते और एक दूसरे के सुख के बन सकते हैं। अगर स्वार्थ के संबंध है, थोड़ा सा गहरी बात मैं सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना, स्वार्थ के संबंध आपस में हमने अगर बनाए हैं तो स्वार्थ जब पूरा हो जाएगा तो संबंध टूट जाएंगे। जो आजकल की दुनिया के अंदर चल रहा है, दैहिक प्यार होते हैं और वो जब प्यार की पूर्ति हो जाती या प्यार की पूर्ति नहीं होती तो उसके बाद वो संबंध विच्छेद हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दुश्मनी का रूप ले लेते हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको एक निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ रूप की भावनाएं, सच्ची भावनाएं एक दूसरे से बनी रहें, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे किसी भी रूप में दैहिक संबंध नहीं बनाओ। जो दैहिक संबंध है वही बंधन बन गए हैं। ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, इतना पक्का हो गया बाबा को साकार में, जो उनकी बहू, उनकी युगल, उनके बच्चे जो भिन्न भिन्न रूप से बाबा को संबंधों से देखते थे, सबके संबंधों का वो रूप बदल गया, सब ने बाबा कहा। यहां तक मम्मा ने ये अभ्यास किया, जो मम्मा की लौकिक माँ थी वो बाबा मम्मा को माँ कह के पुकारते थे, उसकी गोद में जाते थे। ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक ही जीवन के अंदर बेटी कुमारी होते भी माँ कहलाए और माँ उसकी बेटी बनकर के उसकी गोद में जाए, कितनी विचित्र बात है। ऐसा बाबा ने भान दे दिया, ऐसा पक्का करा दिया, आत्मिक स्थिति इतनी पक्की करा दी। मम्मा के साथ के जिनको अनुभव है, हमारी दीदी यहाँ बैठी हैं, पूर्णिमा दीदी सुनाएंगी, मम्मा इतनी प्यूटी की पवित्रता की अवतार थी। मेरे चाचा जी कुमार थे लौकिक में, अभी भी हैं, मधुबन में ही रहते हैं। पिताजी परिवार वाले थे, हम दो बच्चे थे, पत्नी थी, सब घर था साथ में। जब मम्मा हमारे गांव में गई तो मम्मा की दृष्टि से जो पवित्र आत्माएं थी वो चुंबक के ऊपर जैसे सुइयां खिंच जाती है ना, वो पवित्र आत्माएं फट से मां की गोद में चली जाती थी। और जिनमें जरा भी इम्प्यूरिटी थी देह अभिमान वाली, वो खड़े रहते थे, वो टच नहीं कर, सामने नहीं आते थे। तो चाचा जी ने अपने अनुभव में लिखा है मम्मा की पुस्तक में कि जब मैं मम्मा के सामने गया तो मुझे पहले कुमार था, मुझे संकोच होता था, वो कुमारी है, मैं उसके सामने कैसे ऐसे जाऊंगा। लेकिन जब मैं उनके सामने गया और मम्मा ने इतनी स्नेह की दृष्टि दी तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मम्मा ने ऐसे किया और मैं फट से मम्मा की गोदी में चला गया, क्योंकि बिल्कुल पवित्र आत्मा थी, स्वच्छ थी। पिताजी दूर खड़े रह गए, वो सामने नहीं गए, वो खड़े खड़े देखते रह गए क्या हो रहा है। उनको हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं मां की गोदी में जाऊं। माना कुमारी होते भी आत्मिक स्थिति को इतना पक्का किया, इतना गहरा अभ्यास, आप समझ सकते हो, यंग एज थी, 40 साल 45 साल की एज में तो संपन्न बनी, उस एज तक इतनी सेवाएं की, बाबा ने उनको इतना आगे बढ़ाया जो मां की पदवी प्राप्त करके जगत अम्बा बन गई। उसकी प्यूरिटी क्या होगी, उसकी रूहानियत क्या होगी, उसका स्नेह कैसा होगा, उसकी दिव्यता क्या होगी, आप सब विचार करके सोच सकते। भले साकार में नहीं देखा, लेकिन जिसने इतनी पालना बच्चों की, इतना स्नेह दिया, इतना सबको पालना दे करके संपन्न बन गई, वो कैसे जीवन मुक्त स्टेज में रही होगी, कोई बंधन उसको बांध नहीं पाया। तो ये हमारे आगे एग्जाम्पल हैं माँ के, बाबा के, जिन्होंने अपने पारिवारिक जीवन में रह करके इतने बड़ी फैमिली को संभालते हुए बिल्कुल डिटैच, कोई से अटैच नहीं रहे, नष्टो मोहा बन गए। तो भावनात्मक संबंध के साथ साथ आत्मीय संबंध को बढ़ाने की जरूरत है, उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं रहे। हम सब एक दूसरे के लिए हैं, कोई को जरूरत है हम मदद के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन सहारा बनते बनते वो मेरे किनारे को पकड़ न ले, माना हमारे पीछे लटक न जाए। ये बहुत ध्यान देंगे तब पता चलेगा कि कई बार हम किसी को मदद करते हैं, रहम के कारण दयालु बन जाते हैं, सहयोग देते हैं, उनकी दिल की बात सुन लेते हैं, धीरे धीरे उस आत्मा का विशेष स्नेह बढ़ता जाता, वो अटैचमेंट का रूप हो जाता, उसके बिना वो नहीं रह सकता, उसके बिना वो नहीं रह सकता। ये बंधन है, और ये बंधन कभी भी श्रेष्ठ स्थितियों का अनुभव करने नहीं देगा। ये बहुत ऊंची पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम सहारा दें लेकिन अपने आप में फंसाएं नहीं, न मैं किसी में फंस जाऊं न कोई मेरे में फंस जाए, बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत है। आज की प्रवृत्ति के अंदर अगर ग्रस्त व्यवहार है, वो समझता है प्रवृत्ति है मेरी, तो क्या मैं प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति से रहता हूं, एक दूसरे के आधार बन करके मैं किसी देहधारी में फंसा हुआ तो नहीं हूं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, अगर ये भावना ये भासना है अंदर तो ये बहुत गहरी अटैचमेंट है, मोह कहते हैं इसको। जीवन मुक्ति स्टेज में रहने वाली आत्माएं स्वयं को इस बंधनों से निराधार बना लेती है, एक बाबा ही मेरा साथी है, एक ही मेरा सहारा है, एक के सिवाय और कोई नहीं। जब ये अंदर से पक्का होता है तब सब आधार, क्योंकि देहधारी आधार तो खिसकने ही हैं। जिसने दीदी को आधार बनाया था, जिसने दादी को आधार बनाया, जिसने किसी देहधारी को आधार बनाया, मुझे आज इस टॉपिक को लेते हुए सबके चित्र सामने आते हैं कि वो कैसे इस ज्ञान से टूट गए, कैसे उनकी गति हो गई उनके जाने के बाद। जिन्होंने मम्मा को अपना आधार बनाया हुआ था, मम्मा अव्यक्त हुई उसके बाद वो सब ज्ञान से टूट गए, सोचा ही नहीं था मम्मा इतनी जल्दी संपन्न हो जाएगी, शरीर छोड़ देगी, उसके दुख में उसके प्यार में अंदर अंदर दुखी हो गए और ज्ञान से चले गए। जो बाबा को ऐसे साकार रूप में, बाबा कई बार कहता था ना, इसको याद करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, देहधारी को याद नहीं करो। जिन्होंने देहधारी के रूप में बाबा को देखा और अपना बनाया, वो भी दुखी होकर के परेशान हुए, एक भाई था जिसका दीदी से बड़ा प्यार था, बहुत प्यार था। दीदी जो कहे, जहां बिठाए, जैसे कराए, जो सेवा कराए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दीदी अव्यक्त हुई, शरीर छूटा, उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। कितने साल तक वो माइंड इतना अपसेट हुआ, बेचारा उसी अपसेट माइंड से शरीर छोड़ गया। सारा परिवार जो ज्ञान में चलता था वो सब टूट गया। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, किसी भी देहधारी से अगर तुम्हारा विशेष प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गई, तो वो अटैचमेंट सदा दुख देगी, वही बंधन है। उन बंधनों को चेक करना है कि किसी भी देहधारी को मुझे आधार नहीं बनाना, मेरा आधार केवल एक बाबा है। तो जीवन में रहते हुए मुक्त स्टेज का अनुभव करने के लिए टाइम मेरे पास थोड़ा है, मैं 5-6 बातें आपके ध्यान पर देता हूं। अंडरलाइन करना कि अगर इस जीवन में है, मुक्त रहे, तो उसके लिए सबसे पहली बात कर्म जरूर करना। कर्म को छोड़ करके मुक्त होने की जरूरत नहीं है, लेकिन करावन हार की स्मृति में रहकर कर्म करना। मैंने किया, मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, अगर वो कर्तापन का भान बना रहा तो वो मैंपन, कर्तापन का भान आपको बांध देगा अपने बंधन में। कोई भी कर्म करो, बाबा आपने करा लिया, मुझे क्या पता था, मैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट हूं, आप करावन हार हो, आप जो चाहिए करा लो, ये आर्गन्स इस समय आपको मैंने अर्पित कर दिए, ये मुख उसका है, ये आंखें उसकी हैं, ये हाथ उसके हैं, बाबा इसके द्वारा आप जो चाहिए करा लो। जरा भी करने के बाद ये ना आए कि मैंने अच्छा किया, मैं नहीं होता तो यहां पर बिगड़ जाता, मैं पनाया तो बंधन बन जाएगा। इसलिए कर्तापन का भान न हो, करावन हार की सदा स्मृति रहे। दूसरी, संबंध सबके साथ निभाना है, लेकिन एक बैलेंस कभी नहीं टूटे, वो है न्यारा और प्यारा। न्यारा ऐसा नहीं करो जो लगे तो किनारा कर लिया है तो सन्यासी बन गया, प्यारे ऐसे नहीं बनो जो समझे यही मेरा सब कुछ है। बाबा कहता है न्यारा बनना है देह अभिमान से, और प्यारा बनना एक बाबा का, देहधारियों का प्यारा नहीं। अगर बाबा के सच्चे प्यार में हम रहते हैं तो बीच से हमारा प्यार है, और जिसका बीच से प्यार है उसका परिवार से ऑटोमेटिक प्यार होगा। परिवार अलग है ही नहीं बीच से, बाप से प्यार है परिवार से न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहता है सब परिवार के बीच में रहो, लेकिन एक सच्चे बाबा को बीच में रखो तो ये प्यार आपको बंधन में नहीं बांधेगा। तो न्यारा और प्यारा पन का बैलेंस संबंध में बना रहे। तीसरा, पदार्थों को यूज करते हुए अनासक्त वृत्तियां, जिसको बाबा कई बार कहता त्याग वृत्ति है, यूज करो, है ही आपके लिए, ये साधन आपके लिए है, लेकिन अगर नहीं है तो इसके अधीन होकर के नहीं है तो कैसे चल सकेंगे, हो ही नहीं सकता, परेशान होते रहें। बाबा कहता ये बंधन मत बनाओ, है भूप खूब यूज कर लो, लेकिन अधीन हो करके नहीं, अधिकारी बन करके यूज करो, न्यारे हो जाओ। तो अनासक्त वृत्तियां हमारी रहें, ट्रस्टीपन की भावना, ट्रस्टी समझते हो सब, ट्रस्टी का बहुत गहरा विस्तार है। ट्रस्टी आत्माएं जो बाबा की देन हमको मिली है, चाहे विशेषताएं हैं, तन है, मन है, धन है, संबंध है, जो कुछ बाबा ने मुझे संगम पर दिया है तो बाबा की प्रॉपर्टी, समझते हैं सभी, अंदर से समझते हो ये सब बाबा का है, और अगर बाबा का है और मुझे मिला है संभालने के लिए, तो बाबा कहता है ट्रस्टी माना ईमानदार, आनेस्ट, जो आनेस्ट की कल मुरली सुन रहे थे ना, उसमें इतनी आनेस्टी है कि उसकी कोई भी संपत्ति, चाहे उस समय की संपत्ति है, श्वास की संपत्ति है, संकल्प की संपत्ति है, स्थूल में संपत्ति है, संबंध की संपत्ति, जो कुछ बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है उसमें अमानत में ख्यानत नहीं होनी चाहिए, ये बाबा का है, बाबा के सिवाय दूसरा इस पर कोई का अधिकार नहीं हो सकता है। अगर उसका कुछ लगता है, मान लो आपके लौकिक में कोई का हिस्सा है, तो बाबा कहता उसका हिस्सा अलग कर दो, फिर बेटा बनाओ, उसको दे दो जो देना है। लेकिन जो बाबा का है, जिसको बाबा को आपने अर्पित कर दिया, उस पर कोई का अधिकार नहीं हो सकता। उसका विल कर दो, पहले से ही लिख करके दे दो, जिससे जाने के बाद कोई ये नहीं कहे मेरा है। कई बार कहते मेरा तो कोई नहीं ना बहन जी, सब बाबा का ही है सब, और अचानक चले जाते हैं तो उसके बाद पता नहीं कितने जन्म ले लेते आकर, कितने आ जाते संबंधी, मेरा ये था, मेरा ये था, मेरा ये था। हमारी दादी कहती थी हाथ जोड़ करके उसको दे दो, बाबा को नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति झगड़े वाले। अगर उसने जीते जी नहीं किया तो मरने के बाद क्या सफल होगा उसका। तो कुछ भी है, बाबा की प्रॉपर्टी जो आपने दिल से कहा ये बाबा का है, वो बाबा को पहले जीते जी बिल कर दो, बाबा ये तेरा है तो तेरे हाथ, इस पर कोई का अधिकार नहीं रह सकता। तो कभी भी बाबा की अमानत को ख्यानत न हो, ट्रस्टीशिप की भावना, ये तन भी कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है, ये मन भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका है। मैंने तो दे दिया बाबा, ये तन मन धन संबंध सब तेरे हैं, और जब तेरा है मेरा है ही नहीं, और उसने मुझे कहा तुम रख अपने पास संभाल, तो मैं सच्चाई से ईमानदारी से संभालूं, उसको बढ़ाऊं, उसमें ख्यानत न होने दो। ट्रस्टीपन की भावना बंधन मुक्त बना देगी। और दृष्टा और साक्षी, ये दो शब्द बड़े अच्छे हैं पारिवारिक जीवन में। पार्ट को देखना, समय पर साथ देना, लेकिन उसमें इन्वॉल्व होकर के किसी के दुख में बंधन में खुद दुखी नहीं हो जाना। साक्षी दृष्टा स्टेज बहुत अच्छी स्टेज है। ये आसन है बाबा ने हम सबको बैठने का दिया है। बच्चे हर एक के पार्ट को देखो, सबका पार्ट अच्छे से अच्छा है। रोने का पार्ट भी अगर बजा रहा हो भी अच्छा है, कोई कारण होगा, मैं उसमें दुखी क्यों हो जाऊं, इसका ये पार्ट है नाटक के अंदर, इसका ये पार्ट है, ये रोल है। जब साक्षी स्टेज बनेगी तो आप उसमें फंसेंगे नहीं, नहीं तो फंसा लेगा वो। इसलिए साक्षी दृष्टा स्टेज बनी रहे। तो जब हम साक्षी और दृष्टा बन जाते, न्यारे और प्यारे रहते, अनासक्त और ट्रस्टी रहते, अपने आप वृत्तियां उपराम हो जाती है, ऊपर रहते नीचे रहते ही नहीं। तो सबके साथ संबंध होते हुए भी वृत्तियों में है वैराग्य। वैराग्य की वृत्ति बेहद की वृत्ति है। बाबा ने हमको हद का संन्यास नहीं सिखाया है, कुछ छोड़ना नहीं सिखाया है, लेकिन वृत्ति से ये सब मरे पड़े हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं, मेरा कुछ नहीं है। जिनकी वृत्तियों में वैराग्य नहीं है वो कहीं ना कहीं अटके हैं, फंसे हैं, कोई ना कोई बंधन को बांधे हुए है। इसलिए बाबा ने हम सबको परिवर्तन का आधार ही बताया है, जब तक वैराग्य नहीं आया तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए संसार से, परिवार से, संबंधों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से ऐसे लगे कि सब तो पार्टधारी हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, न मेरे हैं न मेरा कोई इनसे हिसाब किताब है। अंदर से वैराग्य वृत्ति जब आएगी, उपराम वृत्ति रहेगी, तो आप देखेंगे पार्ट प्ले करते हुए, सेवाएं करते हुए, कई बार सेवाएं भी अपने बंधन में बांध लेते, सेवा के बिना भी आत्मा नहीं रह सकती, लेकिन सेवा किया और न्यारे हो गए। अगर ये अभ्यास हम करेंगे तो निर्बंधन स्टेज बनेगी, जीवन मुक्त स्थिति का बड़ा सुखद अनुभव होगा। जीवन मुक्त स्टेज में अपने आप आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है, मुक्त स्टेज है। तो आज इस बाबा की घर से ये वरदान बाबा से लेना कि बाबा मैं अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए, संबंध निभाते हुए आप जैसे जीवन मुक्त बन जाऊं, बंधन में न फंसो, न कोई मेरे में फंसे न मैं किसी में फंस जाऊं, ठीक है। ऐसी मुक्त स्टेज बना करके इसके सच्चे सुख का, सच्चे आनंद का अनुभव करो। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय राजू भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से इतने गहराई वाले विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया, कैसे हम सभी बंधन मुक्त जीवन मुक्त बन सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा की बहुत अच्छी एग्जाम्पल देकर सारी बातें सुनाए कि बाबा सबके बीच रहते हुए चाहे धन चाहे संबंध कर्मेंद्रिया जीत बने, कितनी अच्छी तरह बाबा ने सब करके दिखाया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आज हम सभी भी ये संकल्प करेंगे कि हम भी ऐसे बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अवश्य करेंगे और बाबा को और साथ साथ आदरणीय राजू भाई ने जो सुनाया वो सब अपने जीवन में धारण करेंगे। तो अभी हम सभी बहुत प्यार से सकास लेंगे, दृष्टि लेते हुए एक ही संकल्प करेंगे कि हम भी बंधन मुक्त जीवन मुक्त बन जाए।
बदले